श्लोक इदमत्युक्तिरित्युक्तमेतत् गौणोपलालितं प्रस्थानवाक्प्रणीतं तु सारमन्यस्य वर्तमनः। यह कथन अत्युक्ति कहा गया है, यह गौण मार्ग के कवियों के द्वारा पोषित है। इसके विपरीत पहले श्लोक 85-88 में प्रतिपादित सिद्धांत दूसरे वैदर्भ मार्ग का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। कांति गुण का इतिहास। भरत का कांति गुण दंडी के कांति गुण से भिन्न है, जो काम में पड़ने पर मन को चंद्र की तरह आनंदित करता है, उसे अथवा लीला आदि अर्थों से युक्त है। उसे कवि लोग कांति के रूप में जानते हैं। चित्त को आह्लादित करना तो माधुर्य की विशेषता है। ऐसी स्थिति में यह गुण माधुर्य से किस प्रकार भिन्न होगा। मनः श्रोत्र विषयम् को समस्त पद मानकर भरत के इस लक्षण को भी अर्थगत और शब्दगत कांति गुण के रूप में लगाया जा सकता है। अग्नि पुराण में इस गुण के समकक्ष गुण को राग नाम दिया गया है। यह शब्दार्थो भय गुण है। काव्य में जो छाया की अधिकता होती है वह राग होता है। यह भलीभांति अभ्यास में आकर स्वाभाविक कांति का अतिक्रमण कर जाता है। इसके हारिद्र कौसुंभ एवं नीली नामक तीन भेद होते हैं। वामन के शब्दगत कांति का गुण का लक्षण यह है, बंध की उज्ज्वलता कांति होती है, जिसके बिना पुराने काव्य की छाया नकल कहा जाता है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस का अभिव्यक्त होना कांति नामक अर्थ गुण है। श्लोक अन्य धर्मस्तो अन्यत्र लोक सीमानुरोधिना सम्यगाधीयते यत्र स समाधि स्मृतो यथा। लोक की सीमा का अनुवर्तन करने वाले कवि के द्वारा जहाँ अन्य का धर्म अन्य में भलीभांति आरोपित कर दिया जाता है, वह समाधि गुण स्मरण किया गया है। अगले 8 श्लोकों में आचार्य दंडी ने अंतिम गुण समाधि का निरूपण किया है। समाधि शब्द सम आधन धाधन की से दंडी के अनुसार अधिकरण में निष्पन्न है। जहाँ सम्यक आधान किया जाता है वह समाधि है। आधान का अर्थ है स्थापना, आरोप है। वह आरोप के अधिष्ठान और कर्म दो पदार्थों की अपेक्षा करता है। अन्य का अन्य में आरोप गुण या क्रिया के माध्यम से होता है। गुणों का आरोप होने के कारण शब्द की इस प्रकार आरोपित अर्थ का कथन करने की शक्ति को गौणी वृत्ति कहा जाता है। यह आधान जब समीचीन प्रकार से होता है तब काव्य में समाधि नामक गुण अभिव्यक्त होता है। समीचीनता का मापदंड लोक की मर्यादा है। अतः जब कोई कवि अपने काव्य में लोक की मर्यादा को शब्द की प्रयोग परंपरा को ध्यान में रखकर अन्य वस्तु के गुण का आरोप उससे भिन्न वस्तु में करता है तब समाधि नामक गुण होता है। कुमुदानि निमिलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च इति नेत्र क्रियाध्यासा लब्धा तद्वाचिनी श्रुति। कुमुद निमीलन पलके मूंद रहे हैं और कमल उन्मेषण अर्थात पलके खोल रहे हैं। इस कथन में कुमुद और कमल पर आँखों की पलक मूंदना और खोलना क्रिया के आरोप से उन्हीं का अभिधान करने वाले शब्द प्राप्त कर लिए हैं। प्रातःकाल का वर्णन करते हुए यदि कहा जाए कि कुमुद आँखें मूंद रहे हैं और कमल आँखें खोल रहे हैं तो यह कथन समाधि गुण का उदाहरण होगा, क्योंकि आँखें मूंदना और खोलना कुमुदों और कमलों से भिन्न चेतन पुरुष आदि का धर्म है। पर इस कथन में उसका प्रयोग अचेतन कुमुदों और कमलों पर किया गया है। यह आरोप भी लोक द्वारा ऐसे प्रयोग की स्वीकृति के कारण लोकानुरोधी है, लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाला नहीं है। श्लोक निष्ठयूतोद्गिर्णवातान्ति गौणवृत्ति व्यपाश्रयम् अतिसुन्दरम् न्यत्तु ग्राम्यकक्षां विगाहते। निष्ठयूत उद्गिर्णवांत आदि वचन गौणी वृत्ति लक्षणा का आश्रय लेते हैं तो अत्यंत सुंदर होते हैं, किंतु अन्य प्रधान अभिधा वृत्ति का आश्रय लेने वाले मुख्यार्थ में प्रयुक्त ये शब्द ग्राम्य गवार प्रयोगों की कोटि को प्राप्त होते हैं। मुख्यार्थ में जुगुप्सा कारक अर्थ वाले निष्ठयूत उगला हुआ आदि शब्द यदि निष्ठीवन आदि में असमर्थ किसी पदार्थ के धर्म के रूप में प्रतिपादित किया जाए तो यह उस अचेतन पदार्थ पर चेतन के धर्म का आरोप होगा। इसे ही भागत गौण प्रयोग कहा जाता है। गौणी लक्षणा के आश्रय से किए इस प्रकार के प्रयोग अत्यंत सुंदर लगते हैं, किंतु यदि इनका प्रयोग मुख्यार्थ में किया जाता है तो ये जुगुप्सा कारक होने के कारण असभ्य समझे जाते हैं।